यजीद ने मदीने के सूबेदार को लिखा कि तुम हुसैन से मेरे नाम पर बैयत अर्थात उनसे मेरे खलीफा होने की शपथ लो। मतलब यह कि वह गुप्त रीत से उन्हें कत्ल करने का षड्यंत्र रचने लगा। हुसैन ने बैयत लेने से इनकार किया। यजीद ने समझ लिया कि हुसैन बगावत करना चाहते हैं, अतएव वह उनसे लड़ने के लिए शक्ति संचय करने लगा। कूफा प्रांत के लोगों को हुसैन से प्रेम था, वे उन्हीं को अपना खलीफा बनाने के पक्ष में थे। यजीद को जब यह बात मालूम हुई तो उसने कूफा के नेताओं को धमकाना और नाना प्रकार के कष्ट देना आरंभ किया। कूफा निवासियों ने हुसैन के पास, जो उस समय मदीने से मक्के चले गए थे, संदेशा भेजा कि आप आकर हमें इस संकट से मुक्त कीजिए। हुसैन ने इस संदेशे का कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वह राज्य के लिए खून बहाना नहीं चाहते थे। इधर कूफा में हुसैन के प्रेमियों की संख्या बढ़ने लगी, लोग उनके नाम पर बैयत करने लगे। थोड़े ही दिनों में इन लोगों की संख्या 20,000 तक पहुंच गई। इस बीच में इन्होंने हुसैन की सेवा में दो संदेशे और भेजे, किंतु हुसैन ने उसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। अंत में कूफा वालों ने एक अत्यंत आग्रहपूर्ण पत्र लिखा, जिसमें हुसैन को हजरत मोहम्मद और दीन इस्लाम के निहोरे अपनी सहायता करने को बुलाया। उन्होंने बहुत अन्याय विनय के बाद लिखा था, अगर आप न आए तो कल कयामत के दिन अल्लाह ताला के हुजूर में हम आप पर दावा करेंगे कि क्या इलाही, हुसैन ने हमारे ऊपर अत्याचार किया था, क्योंकि हमारे ऊपर अत्याचार होते देखकर वह खामोश बैठे रहे और सब लोग फरियाद करेंगे कि ऐ खुदा, हुसैन से हमारा बदला दिला दे। उस समय आप क्या जवाब देंगे और खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे? धर्मप्राण हुसैन ने जब यह पत्र पढ़ा तो उनके रोएं खड़े हो आए और उनका हृदय जल के समान तरल हो गया। उनके गालों पर धर्मानुराग के आंसू बहने लगे। उन्होंने तत्काल उन लोगों के नाम एक आश्वासन पत्र लिखा, मैं शीघ्र ही तुम्हारी सहायता को आऊँगा। और अपने चचेरे भाई मुस्लिम के हाथ उन्होंने यह पत्र कूफा वालों के पास भेज दिया। मुस्लिम मार्ग की कठिनाइयां झेलते हुए कूफा पहुंचे। उस समय कूफा का सूबेदार एक शांत पुरुष था। उसने लोगों को समझाया, नगर में कोई उपद्रव न होने पाए, मैं उस समय तक किसी से न बोलूंगा जब तक कोई मुझे क्लेश न पहुंचावेगा। जिस समय यजीद को मुस्लिम के कूफा पहुंचने का समाचार मिला तो उसने एक दूसरे सूबेदार को कूफा में नियुक्त किया, जिसका नाम ओबैद बिन जियाद था। यह बड़ा निठुर और कुटिल प्रकृति का मनुष्य था। इसने आते ही आते कूफा में एक सभा की, जिसमें घोषणा की गई कि जो लोग यजीद के नाम पर बैयत लेंगे उन पर खलीफा की कृपा दृष्टि होगी, परंतु जो लोग हुसैन के नाम पर बैयत लेंगे उनके साथ किसी तरह की रियायत न की जाएगी। हम उसे सूली पर चढ़ा देंगे और उसकी जागीर या वृत्ति जब्त कर लेंगे। इस घोषणा ने यथेष्ट प्रभाव डाला। कूफा वालों के हृदय कांप उठे। जियाद को वे भली भांत जानते थे। उस दिन जब मुस्लिम भी मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो किसी ने उनका सांस न दिया। जिन लोगों ने पहले हुसैन की सेवा में आवेदन पत्र भेजा था उनका कहीं पता न था। सभी के साहस छूट गए थे। मुस्लिम ने एक बार कुछ लोगों की सहायता से जियाद को घेर लिया, किंतु जियाद ने अपने एक विश्वासपात्र सेवक के मकान की छत पर चढ़कर लोगों को यह संदेशा दिया कि जो लोग यजीद की मदद करेंगे उन्हें जागीर दी जाएगी और जो लोग बगावत करेंगे उन्हें ऐसा दंड दिया जाएगा कि उनके नाम को रोने वाला भी न रहेगा। नेतागण यह धमकी सुनकर दहल उठे और मुस्लिम को छोड़ छोड़ कर 10-10, 20-20 आदमी विदा होने लगे। यहाँ तक कि मुस्लिम वहाँ अकेला रह गया। विवश हो उसने एक वृद्धा के घर में शरण लेकर अपनी जान बचाई। दूसरे दिन जब उबैदुल्लाह को मालूम हुआ कि मुस्लिम अमुक वृद्धा के घर में छिपा है तो उसने 300 सिपाहियों को उसे गिरफ्तार करने के लिए भेजा। असहाय मुस्लिम ने तलवार खींच ली और शत्रुओं पर टूट पड़े, पर अकेले कर ही क्या सकते थे। थोड़ी देर में जख्मी होकर गिर पड़े। उस समय सूबेदार से उनकी जो बातें हुई उनसे विदित होता है कि वह कैसे वीर पुरुष थे। गवर्नर उनकी भयशून्य बातों से और भी गर्म हो गया, उन्हें तुरंत कत्ल करा दिया। हुसैन अपने पूज्य पिता की भांति साधुओं का सा तरल जीवन व्यतीत करने के लिए बनाए। कोई चतुर मनुष्य होता तो उस समय दुर्गम पहाड़ियों में जा छिपताया और यमन के प्राकृतिक दुर्गों में बैठकर चारों ओर से सेना एकत्र करता। देश में उनका जितना मान था और लोगों को उन पर जितनी भक्ति थी, उसके देखते 20-25 हजार सेना एकत्र कर लेना उनके लिए कठिन न था, किंतु वह अपने को पहले ही से हारा हुआ समझने लगे। यह सोचकर वह कहीं भागते न थे, उन्हें भय था कि शत्रु मुझे अवश्य खोज लेगा। वह सेना जमा करने का भी प्रयत्न न करते थे, यहाँ तक कि जो लोग उनके साथ थे उन्हें भी अपने पास से चले जाने की सलाह देते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि मैं खलीफा बनना चाहता हूँ। वह सदैव यही कहते रहे कि मुझे लौट जाने दो, मैं किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता। उनकी आत्मा इतनी उच्च थी कि वह सांसारिक राज्य भोग के लिए संग्राम क्षेत्र में उतर कर उसे कलुषित नहीं करना चाहते थे। उनके जीवन का उद्देश्य आत्मशुद्धि और धार्मिक जीवन था। वह कूफा में जाने को इसलिए सहमत नहीं हुए थे कि वहाँ अपनी खिलाफत स्थापित करें, बल्कि इसलिए कि वह अपने सहधर्मियों की विपत्ति को देख न सकते थे। वह कूफा जाते समय अपने सब संबंधियों से स्पष्ट शब्दों में कह गए थे कि मैं शहीद होने जा रहा हूँ। यहाँ तक कि वह एक स्वप्न का भी उल्लेख करते थे जिसमें उनके नाना ने उनको स्वर्ग आने का निमंत्रण दिया था और वह उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी टेक केवल यह थी कि मैं यजीद के नाम पर बैयत न करूंगा। इसका कारण यही था कि यजीद मध्य व्यभिचारी और इस्लाम धर्म के नियमों का पालन न करने वाला था। यदि यजीद ने उनकी हत्या कराने की चेष्टा न की होती तो वह शांतिपूर्वक मदीने में जीवन भर पड़े रहते, पर समस्या यह थी कि उनके जीवित रहते हुए यजीद को अपना स्थान सुरक्षित नहीं मालूम हो सकता था। उसके निष्कंटक राज्य भोग के लिए हुसैन का उसके मार्ग से सदा के लिए हट जाना परम आवश्यक था, और इस हेतु कि खिलाफत एक धर्म प्रधान संस्था थी, अतः यजीद को हुसैन के रंग क्षेत्र में आने का उतना भय न था जितना उनके शांति सेवन का, क्योंकि शांति सेवन से जनता पर उनका प्रभाव बढ़ता जाता था। इसीलिए यजीद ने यह भी कहा था कि हुसैन का केवल उनके नाम पर बैयत लेना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें उसके दरबार में भी आना चाहिए। यजीद को उनकी बैयत पर विश्वास न था, वह उन्हें किसी भांति अपने दरबार में बुलाकर उनकी जीवन लीला को समाप्त कर देना चाहता था। इसीलिए यह धारणा कि हुसैन अपनी खिलाफत कायम करने के लिए कूफा गए निर्मूल सिद्ध होती है। वह कूफा इसलिए गए कि अत्याचार पीड़ित कूफा निवासियों की सहायता करें, उन्हें प्राण रक्षा के लिए कोई जगह दिखाई न देती थी। यदि वह खिलाफत के उद्देश्य से कूफा जाते तो अपने कुटुंब के केवल 72 प्राणियों के साथ न जाते, जिनमें बाल वृद्ध सभी थे। कूफा वालों पर कितना ही विश्वास होने पर भी वह अपने साथ अधिक मनुष्यों को लाने का प्रयत्न करते। इसके सिवा उन्हें यह बात पहले से ज्ञात थी कि कूफा के लोग अपने वचनों पर दृढ़ रहने वाले नहीं हैं। उन्हें कई बार इसका प्रमाण मिल चुका था कि थोड़े से प्रलोभन पर भी वे अपने वचनों से विमुख हो जाते हैं। हुसैन के इष्ट मित्रों ने उनका ध्यान कूफा वालों की इस दुर्बलता की ओर भी खींचा, पर हुसैन ने उनकी सलाह न मानी। वह शहादत का प्याला पीने के लिए अपने को धर्म की वेदी पर बल देने के लिए विकल हो रहे थे। इससे हितैषियों के मना करने पर भी वह कूफा चले गए। दैव संयोग से यह तिथि वही थी जिस दिन कूफा में मुस्लिम शहीद हुए थे। 18 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह नाहनेमा के समीप कर्बला के मैदान में पहुंचे, जो फरात नदी के किनारे था। इस मैदान में न कोई बस्ती थी न कोई वृक्ष। कूफा के गवर्नर को की आज्ञा से वह इस निर्जन और निर्जल स्थान में डेरे डालने को विवश किए गए। शत्रुओं की सेना हुसैन के पीछे पीछे मक्के से ही आ रही थी और सेनाएं भी चारों ओर फैला दी गई थीं कि हुसैन किसी गुप्त मार्ग से कूफा न पहुंच जाएं। कर्बला पहुंचने के एक दिन पहले उन्हें हूर की सेना मिली। हुसैन ने हूर को बुलाकर पूछा, तुम मेरे पक्ष में हो या विपक्ष में? हूर ने कहा, मैं आपसे लड़ने के लिए भेजा गया हूँ। जब तीसरा पहर हुआ तो हुसैन नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए और उन्होंने हूर से पूछा, तू क्या मेरे पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा? हूर ने हुसैन के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ना स्वीकार किया। हुसैन ने अपने साथियों के साथ हूर की सीना को भी नमाज पढ़ाई। हूर ने यजीद की बैयत ली थी, पर वह सद्विचारशील पुरुष था। हजरत मोहम्मद के नवासे से लड़ने में उसे संकोच होता था। वह बड़े धर्म संकट में पड़ा। वह सच्चे हृदय से चाहता था कि हुसैन मक्का लौट जाएं। प्रकट रूप में तो हुसैन को उबैदुल्लाह के पास ले चलने की धमकी देता था, पर हृदय से उन्हें अपने हाथों कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने खुले शब्दों में हुसैन से कहा, यदि मुझसे कोई ऐसा अनुचित कार्य हो गया जिससे आपको कोई कष्ट पहुंचा तो मेरे लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ जाएंगे, और यदि मैं आपको उबैदुल्लाह के पास न ले जाऊं तो कूफा में नहीं घुस सकता। हाँ, संसार विस्तृत है, कयामत के दिन आपके नाना की कृपा दृष्टि से वंचित होने की अपेक्षा यही कहीं अच्छा है कि किसी दूसरी ओर निकल जाऊं। आप मुख्य मार्ग को छोड़कर किसी अज्ञात मार्ग से कहीं चले जाएं। मैं कूफा के गवर्नर अर्थात आमिल को लिख दूंगा कि हुसैन से मेरी भेंट नहीं हुई, वह किसी दूसरी ओर चले गए। मैं आपको कसम दिलाता हूं कि अपने ऊपर दया कीजिए और कूफा न जाइए। पर हुसैन ने कहा, तुम मुझे मौत से क्या डराते हो? मैं तो शहीद होने के लिए ही चला हूँ। उस समय यदि हुसैन हूर की सेना पर आक्रमण करते तो संभव था उसे परास्त कर देते, पर अपने इष्ट मित्रों के अनुरोध करने पर भी उन्होंने यही कहा, हम लड़ाई के मैदान में अग्रसर न होंगे, यह हमारी नीति के विरुद्ध है। इससे भी यही बात सिद्ध होती है कि हुसैन को अब अपनी आत्मरक्षा का कोई उपाय न सूझता था। उनमें साधुओं का सा संतोष था, पर योद्धाओं का सा धैर्य न था, जो कठिन से कठिन समय पर भी कष्ट निवारण का उपाय निकाल लेते हैं। उनमें महात्मा गांधी का सा आत्मसमर्पण था, किंतु शिवाजी की दूरदर्शिता न थी। इधर हुसैन और उनके आत्मीय तथा सहायक गण तो अपने अपने खीमे गाड़ रहे थे, और उधर उबैदुल्लाह कूफा का गवर्नर लड़ाई की तैयारी कर रहा था। उसने उमर बिन साद नाम के एक योद्धा को बुलाकर हुसैन की हत्या करने के लिए नियुक्त किया, और इसके बदले में रय सूबे के आमिल का उच्च पद देने को कहा। उमर बिन साद विवेकहीन प्राणी न था। वह भली भांत जानता था कि हुसैन की हत्या करने से मेरे मुख पर ऐसी कालिमा लग जाएगी, किंतु रय सूबे का उच्च पद उसे असमंजस में डाले हुए था। उसके संबंधियों ने समझाया, तुम हुसैन की हत्या करने का बीड़ा न उठाओ, इसका परिणाम अच्छा न होगा। उमर ने जाकर उबैदुल्लाह से कहा, मेरे सिर पर हुसैन के वध का भार न रखिए, परंतु रय की गवर्नरी छोड़ने को वह तैयार न हो सका। अतएव अब उबैदुल्लाह ने साफ साफ कह दिया कि रय का उच्च पद हुसैन की हत्या किए बिना नहीं मिल सकता। यदि तुम्हें यह सौदा महंगा जचता हो तो कोई जबरदस्ती नहीं, किसी और को यह पद दिया जाएगा। तो उमर का आसन डोल गया, वह इस निषिद्ध कार्य के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी आत्मा को ऐश्वर्य लालसा के हाथ बेच दिया। उबैदुल्लाह ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सा इनाम इकराम दिया और 4000 सैनिक उसके साथ नियुक्त कर दिए। उमर बिन साद की आत्मा अब भी उसे शुद्ध करती रही। वह सारी रात पड़ा अपनी अवस्था या दुर्वस्था पर विचार करता रहा। वह जिस विचार से देखता उसी से अपना यह कर्म घृणित जान पड़ता था। प्रातःकाल वह फिर कूफा के गवर्नर के पास गया। उसने फिर अपनी लाचारी दिखाई, परंतु रय की सूबेदारी ने उस पर फिर विजय पाई। जब वह चलने लगा तो बैदुल्लाह ने उसे कड़ी ताकीद कर दी कि हुसैन और उनके साथी फरात नदी के समीप किसी तरह न आने पावें और एक घूंट पानी भी न पी सकें। हूर की 1000 सेना भी उमर के साथ आ मिली। इस प्रकार उमर के साथ 5000 सैनिक हो गए। अब उमर भी यही चाहता था कि हुसैन के साथ लड़ना न पड़े। उसने एक दूत उनके पास भेजकर पूछा, आप अब क्या निश्चय करते हैं? हुसैन ने कहा, कूफा वालों ने मुझसे दगा की है, उन्होंने अपने कष्ट की कथा कहकर मुझे यहाँ बुलाया, और अब वह मेरे शत्रु हो गए हैं। ऐसी दशा में मैं मक्के लौट जाना चाहता हूँ, यदि मुझे ज़बरदस्ती रोका न जाए। उमर मन में प्रसन्न हुआ कि शायद अब कलंक से बच जाऊँ। उसने यह समाचार तुरंत ओबैदुल्लाह को लिख भेजा, किंतु वहाँ तो हुसैन की हत्या करने का निश्चय हो चुका था। उसने उमर को उत्तर दिया, हुसैन से बैयत लो और यदि वह इस पर राजी न हो तो मेरे पास लाओ। शत्रुओं को इतनी सेना जमा कर लेने पर भी सहसा हुसैन पर आक्रमण करते डर लगता था कि कहीं जनता में उपद्रव न मच जाए। इसलिए इधर तो उमर बिन साद करबला को चला और उधर ओबैदुल्लाह ने कूफा की जामा मस्जिद में लोगों को जमा किया। उसने एक व्याख्यान देकर उन्हें समझाया, यजीद के खानदान ने तुम लोगों पर कितना न्याययुक्त शासन किया है और वे तुम्हारे साथ कितनी उदारता से पेश आए हैं। यजीद ने अपने सुशासन से देश को कितना समृद्धिपूर्ण बना दिया है। रास्ते में अब चोरों और लुटेरों का कोई खटका नहीं है। न्यायालयों में सच्चा निष्पक्ष न्याय होता है। उसने कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए हैं। राजभक्तों की जागीरें बढ़ा दी गई हैं। विद्रोहियों के कोट तहस नहस कर दिए गए हैं, जिसमें वे तुम्हारी शांति में बाधक न हो सकें। तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए उसने चिरस्थायी सुविधाएं दे रखी हैं। ये सब उसकी दयाशीलता और उदारता के प्रमाण हैं। यजीद ने मेरे नाम फरमान भेजा है कि मैं तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा दृष्टि करूं और जिसे एक दीनार वृत्ति मिलती है उसकी वृत्ति 100 दीनार कर दूं। इसी तरह वेतन में वृद्धि कर दूं और तुम्हें उसके शत्रु हुसैन से लड़ने के लिए भेजूं। यदि तुम अपनी उन्नति और वृद्धि चाहते हो तो तुरंत तैयार हो जाओ, विलम्ब करने से काम बिगड़ जाएगा। यह व्याख्यान सुनते ही स्वार्थ के मतवाले नेता लोग धर्माधर्म के विचार को तिलांजल देकर समर भूमि में चलने के लिए तैयारी करने लगे। शिमर ने 4,000 सवार जमा किए और वह बिनसाद से जा मिला। रिकाब ने 2,000, हसीन ने 4,000, मसायर ने 3,000 और एक अन्य सरदार ने 2,000 योद्धा जमा किए। सबके सब दल बल सजाकर करबला को चले। उमर बिन साद के पास अब पूरे 22,000 सैनिक हो गए। कैसी दिल लगी है कि 72 आदमियों को परास्त करने के लिए इतनी बड़ी सेना खड़ी हो जाए। उन 72 आदमियों में कितने ही बालक और कितने ही वृद्ध थे। फिर प्यास से ने सभी को अधमरा कर रखा था, किंतु शत्रुओं ने अवस्था को भली भांति समझकर यह तैयारी की थी। हुसैन की शक्ति न्याय और सत्य की शक्ति थी। यह यजीद और हुसैन का संग्राम न था, यह इस्लाम धार्मिक जनसत्ता का पूर्व इस्लाम की राजसत्ता से संघर्ष था। हुसैन उन सब व्यवस्थाओं के पक्ष में थे जिनका हजरत मोहम्मद द्वारा प्रादुर्भाव हुआ था, मगर यजीद उन सभी बातों का प्रतिपक्षी था। दैव योग से इस समय अधर्म ने धर्म को पैरों तले दबा लिया था, पर यह अवस्था एक क्षण में परिवर्तित हो सकती थी और उसके लक्षण भी प्रकट होने लगे थे। बहुतेरे सैनिक जाने को तो चले जाते थे, परंतु अधर्म के विचार से सेना से भाग आते थे। जब ओबैदुल्लाह को यह बात मालूम हुई तो उसने कई निरीक्षक नियुक्त किए। उनका काम यही था कि भागने वालों का पता लगावें। कई सिपाही इस प्रकार जान से मार डाले गए। यह चाल ठीक पड़ी। भगोड़े भयभीत होकर फिर सेना में जा मिले। इस संग्राम में सबसे घोर निर्दयता जो शत्रुओं ने हुसैन के साथ की वह पानी का बंद कर देना था। ओबैदुल्लाह ने उमर को कड़ी ताकीद कर दी थी कि हुसैन के आदमी नदी के समीप न जाने पावे, यहाँ तक कि वे कुएं खोदकर भी पानी न निकाल पावे। एक सेना फरात नदी की रक्षा करने के लिए भेज दी गई। उसने हुसैन की सेना और नदी के बीच में डेरा जमाया। नदी की ओर जाने का कोई रास्ता न रहा। थोड़े नहीं 6,000 सिपाही नदी का पहरा दे रहे थे। हुसैन ने यह ढंग देखा तो स्वयं इन सिपाहियों के सामने गए और उन पर प्रभाव डालने की कोशिश की, पर उन पर कुछ असर न हुआ। लाचार होकर वह लौट आए। उस समय प्यास के मारे इनका कंठ सूख जाता था। स्त्रियां और बच्चे बिलख रहे थे, किंतु उन पाषाण हृदय पिशाचों को इन पर दया न आती थी। शहीद होने के 3 दिन पहले हुसैन और अन्य प्राणी प्यास के मारे बेहोश हो गए। तब हुसैन ने अपने प्रिय बंधु अब्बास को बुलाकर उन्हें 20 सवार तथा 30 पैदल देकर उनसे कहा, अपने साथ 20 मस्कें ले जाओ और पानी भर ले आओ। अब्बास ने शहर से इस आदेश को स्वीकार किया। वह नदी के किनारे पहुंचे। पहरेदार ने पुकारा, कौन है? इधर उस पहरेदार का एक भाई भी था। वह बोला, मैं हूँ, तेरे चाचा का बेटा, पानी पीने आया हूँ। पहरेदार ने कहा, पी ले। भाई ने उत्तर दिया, कैसे पी लूँ, जब हुसैन और उनके बाल बच्चे प्यासे मर रहे हैं तो मैं किस मुँह से पी लूँ? पहरेदार ने कहा, यह तो जानता हूँ, पर करूँ क्या, हुक्म से मजबूर हूँ। अब्बास के आदमी मशकें लेकर नदी की ओर गए और पानी भर लिया। रक्षक दल ने इनको रोकने की चेष्टा की, पर ये लोग पानी लिए हुए बच निकले। हुसैन ने फिर अंतिम बार संधि करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने उमर बिन साद को संदेशा भेजा कि आज मुझसे रात को दोनों सेनाओं के बीच में मिलना। उमर निश्चित समय पर आया। हुसैन से उसकी बहुत देर तक एकांत में बातें हुई। हुसैन ने संधि की 3 शर्तें बताई, या तो हम लोगों को मक्के वापस जाने दी जाए, या सीमा प्रांत की ओर शांतिपूर्वक चले जाने की अनुमति मिले, या मैं यजीद के पास भेज दिया जाऊं। उमर ने उबैदुल्लाह को यह शुभ सूचना सुनाई और वह उसे मानने के लिए तैयार भी मालूम होता था, किंतु शिमर ने जोर दिया कि दुश्मन चंगुल में आ फंसा है तो उसे निकलने न दो, नहीं तो उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि तुम उसका सामना न कर सकोगे। उमर मजबूर हो गया। मुहर्रम की 9वीं तारीख को, अर्थात हुसैन की शहादत के एक दिन पहले, कूफा के देहातों से कुछ लोग हुसैन की सहायता करने आए। उबैदुल्लाह को यह बात मालूम हुई तो उसने उन आदमियों को भगा दिया और उमर को लिखा, अब तुरंत हुसैन पर आक्रमण करो, नहीं तो इस टाल मटोल की तुम्हें सजा दी जाएगी। फिर क्या था, प्रातःकाल 22,000 योद्धाओं की सेना हुसैन से लड़ने चली। जुगनू की चमक को बुझाने के लिए मेघमंडल का प्रकोप हुआ। हुसैन को मालूम हुआ तो वह घबराए। उन्हें यह अन्याय मालूम हुआ कि अपने साथ अपने साथियों और सहायकों के भी प्राणों की आहुति। उन्होंने इन लोगों को इसका अवसर देना उचित समझा कि वे चाहें तो अपनी जान बचावें, क्योंकि यजीद को उन लोगों से कोई शत्रुता न थी। इसलिए उन्होंने उमर बिन साद को पैगाम भेजा कि हमें एक रात के लिए मोहलत दो। उमर ने अन्य सेनानायकों से परामर्श करके मोहलत दे दी। तब हजरत हुसैन ने अपने समस्त सहायकों और परिवार वालों को बुलाकर कहा, कल जरूर यह भूमि मेरे खून से लाल हो जाएगी। मैं तुम लोगों का हृदय से अनुग्रहित हूँ कि तुमने मेरा साथ दिया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वह तुम्हें इस नेकी का सवाब दे। तुमसे अधिक वीरात्मा और पवित्र हृदय वाले मनुष्य संसार में न होंगे। मैं तुम लोगों को सहर्ष आज्ञा देता हूँ कि तुम में से जिसकी जहाँ इच्छा हो चला जाए। मैं किसी को दबाना नहीं चाहता, न किसी को मजबूर करता हूँ, किंतु इतना अनुरोध अवश्य करूँगा कि तुम में से प्रत्येक मनुष्य मेरे आत्मीय जनों में से एक एक को अपने साथ ले ले। संभव है खुदा तुम्हें तबाही से बचा ले, क्योंकि शत्रु मेरे रुधिर का प्यासा है। मुझे पा जाने पर उसको किसी और की तलाश न होगी। यह कहकर उन्होंने इसलिए चिराग बुझा दिया कि जाने वालों को संकोचवश वहाँ न रहना पड़े। कितना महान, पवित्र और निस्वार्थ आत्मसमर्पण है। किंतु इस वाक्य का समाप्त होना था कि वे सब लोग चिल्ला उठे, हम ऐसा नहीं कर सकते। खुदा वह दिन न दिखावे कि हम आपके बाद जीते रहें। हम दूसरों को क्या मुंह दिखाएंगे? उनसे क्या यह कहेंगे कि हम अपने स्वामी तथा अपने बंधु तथा अपने इष्ट मित्र को शत्रुओं के बीच में छोड़ आए? उनके साथ एक भाला भी न चलाया, एक तीर तलवार भी न चलाई? हम आपको अकेला छोड़कर कदापि नहीं जा सकते। हम अपने को, अपने धन को और अपने कुल को आपके चरणों पर न्यौछावर कर देंगे। इस तरह 9वीं तारीख मुहर्रम की रात आधी कटी। शेष रात्रि लोगों ने ईश्वर प्रार्थना में काटी। हुसैन ने एक रात की मोहलत इसलिए नहीं ली थी कि समर की रही सही तैयारी पूरी कर लें। प्रातःकाल तक सब लोग सिजदे करते और अपने मुक्ति के लिए दुआएं मांगते रहे। प्रभात हुआ, वह प्रभात जिसकी संसार के इतिहास में उपमा नहीं है। किसकी आंखों में यह अलौकिक दृश्य होगा कि 72 आदमी 22,000 योद्धाओं के सम्मुख खड़े हुसैन के पीछे सुबह की नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का शायद यह अंतिम सौभाग्य है। वे कैसे रणधीर पुरुष हैं जो जानते हैं कि एक क्षण में हम सब के सब इस आंधी में उड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी पर्वत की भांति अचल खड़े हैं। मानो संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उन्हें भयभीत कर सके। किसी के मुख पर चिंता नहीं है, कोई निराशा और हताश नहीं है। युद्ध के उन्माद ने, अपने सच्चे स्वामी के प्रति अटल विश्वास ने उनके मुख को तेजस्वी बना दिया है। किसी के हृदय में कोई अभिलाषा नहीं है, अगर कोई अभिलाषा है तो यही कि कैसे अपने स्वामी की रक्षा करें। इसे सेना कौन कहेगा जिसके दमन को 22,000 योद्धा एकत्र किए गए थे। इन 72 प्राणियों में एक भी ऐसा न था जो सर्वथा लड़ाई के योग्य हो। सब के सब भूख प्यास से तड़प रहे थे। कितनों के शरीर पर तो मांस का नाम तक नहीं था और उन्हें बिना ठोकर खाए दो पग चलना भी कठिन था। इस प्राण पीड़ा के समय ये लोग उस सेना से लड़ने को तैयार थे जिसमें अरब देश के चुने हुए जवान थे, जिन पर अरब को गर्व हो सकता था। उन दिनों समर की दो पद्धतियां थी, एक तो सम्मिलित जिसमें समस्त सेना मिलकर लड़ती थी और दूसरी व्यक्तिगत जिसमें दोनों दलों के एक एक योद्धा निकल कर लड़ते थे। हुसैन के साथ इतने कम आदमी थे कि सम्मिलित संग्राम में शायद वह एक क्षण भी न ठहर सकते, अतः उनके लिए दूसरी शैली ही उपयुक्त थी। एक एक करके योद्धागण समक्ष क्षेत्र में आने और शहीद होने लगे, लेकिन इसके पहले अंतिम बार हुसैन ने शत्रुओं से बड़ी ओजस्वी भाषा में अपनी निर्दोषता सिद्ध की। उनके अंतिम शब्द ये थे, खुदा की कसम मैं पद्दलित और अपमानित होकर तुम्हारी शरण न जाऊंगा और न मैं दासों की भांति लाचार होकर ये जीत की खिलाफत को स्वीकार करूंगा। ऐ खुदा के बंदों, मैं खुदा से शांति का प्रार्थी हूँ और उन प्राणियों से जिन्हें खुदा पर विश्वास नहीं है, जो गरूर में अंधे हो रहे हैं, पनाह मांगता हूँ। शेष कथा आत्मत्याग, प्राण समर्पण, विशाल धैर्य और अविचल वीरता की अलौकिक और स्मरणीय गाथा है, जिसके कहने और सुनने से आंखों में आंसू उमड़ आते हैं, जिस पर रोते हुए लोगों को 13 शताब्दियां बीत गईं और अभी अनंत शताब्दियां रोते बीतेंगी। हूर का जिक्र पहले आ चुका है। यह वही पुरुष है जो 1,000 सिपाहियों के साथ हुसैन के साथ साथ आया था और जिसने उन्हें इस निर्जल मरुभूमि पर ठहरने को मजबूर किया था। अभी तक आशा थी कि शायद ओबेदुल्लाह हुसैन के साथ न्याय करे, किंतु जब उसने देखा कि लड़ाई छिड़ गई और अब समझौते की कोई आशा नहीं है, तो अपने कृत्य पर लज्जित होकर वह हुसैन की सेना से आ मिला। जब वह अनिश्चित भाव से अपने मोर्चे से निकलकर हुसैन की सेना की ओर चला, तब उसी सेना के एक सिपाही ने कहा, तुमको मैंने किसी लड़ाई में इस तरह कांपते हुए चलते नहीं देखा। हूर ने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग और नरक की दुविधा में पड़ा हुआ हूँ और सच यह है कि मैं स्वर्ग के सामने किसी चीज की हस्ती नहीं समझता, चाहे कोई मुझे मार डाले। यह कहकर उसने घोड़े की एड़ लगाई और हुसैन के पास आ पहुंचा। हुसैन ने उसका अपराध क्षमा कर दिया और उसे गले से लगाया। तब हूर ने अपनी सेना को संबोधित करके कहा, तुम लोग हुसैन की शर्तें क्यों नहीं मानते? कितने खेत की बात है कि तुमने स्वयं उन्हें बुलाया और जब वह तुम्हारी सहायता करने आए तो तुम उन्हीं को मारने पर उद्यत हो गए। वह अपनी जान लेकर चले भी जाना चाहते हैं, किंतु तुम लोग उन्हें कहीं जाने भी नहीं देते। सबसे बड़ा अन्याय यह कर रहे हो कि उन्हें नदी से पानी नहीं लेने देते, जिस पानी को पशु और पक्षी तक पी सकते हैं, वह भी उन्हें मयस्सर नहीं। इस पर शत्रुओं ने उन पर तीरों की वर्षा कर दी और हूर भी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हीं के साथ उनका पुत्र भी शहीद हुआ। आश्चर्य होता है और दुख भी कि इतना सब कुछ हो जाने पर भी हुसैन को इन नरपिशाचों से कुछ कल्याण की आशा बनी हुई थी। वह जब अवसर पाते थे तभी अपनी निर्दोषता प्रकट करते हुए उनसे आत्मरक्षा की प्रार्थना करते थे। दुराशा में भी यह आशा इसीलिए थी कि वह हज़रत मोहम्मद के नवासे थे और उन्हें आशा होती थी कि शायद अब भी मैं उनके नाम पर इस संकट से मुक्त हो जाऊं। उनके इन सभी संभाषणों में आत्मरक्षा की इतनी विशद चिंता व्याप्त है जो दीन चाहे न हो पर करुण अवश्य है, और एक आत्मदर्शी पुरुष के लिए जो स्वर्ग में इससे कहीं उत्तम जीवन का स्वप्न देख रहा हो, जिसको अटल विश्वास हो कि स्वर्ग में हमारे लिए अकथनीय सुख उपस्थित है, शोभा नहीं देती। हूर के शहीद होने के पश्चात हुसैन ने फिर शत्रु सेना के सम्मुख खड़े होकर कहा, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि मेरी इन तीन बातों में से एक को मान लो। मुझे यजीद के पास जाने दो कि उससे बहस करूँ। यदि मुझे निश्चय हो जाएगा कि वह सत्य पर है तो मैं उसकी बैयत कर लूँगा। इस पर किसी पाषाण हृदय ने कहा, तुम्हें यजीद के पास न जाने देंगे, तुम मधुरभाषी हो, अपनी बातों में उसे फंसा लोगे और इस समय मुक्त होकर देश में विद्रोह फैला दोगे। दो, जब यह नहीं मानते तो छोड़ दो कि मैं अपने नाना के रवजे की मुजाबिरी करूं। इस पर भी किसी के उपर्युक्त शंका प्रकट की। तीन, अगर ये दोनों बातें तुम्हें अस्वीकार हैं तो मुझे और मेरे साथियों को पानी दो, क्योंकि प्राणी मात्र को पानी लेने का हक है। इसका भी वैसा ही कठोर निराशाजनक उत्तर मिला। इस प्रश्नोत्तर के बाद हुसैन की ओर से बुरीर मैदान में आए उधर से मुवक्कल निकला। बुरीर ने अपने प्रतिपक्षी को मार लिया और फिर खुद सेना के हाथों मारे गए। बुरीर के बाद अब्दुल्लाह निकले और 10-20 शत्रुओं को मारकर काम आए। अब्दुल्लाह के बाद उनका पुत्र जिसका नाम वहब था मैदान में आया। उसकी वीर गाथा अत्यंत मर्मस्पर्शी है और राजपूताने के अमर वीर वृत्तांत की याद दिलाती है। वहब का विवाह अभी केवल 17 दिन हुए थे। हाथ की मेहंदी तक न छूटी थी जब उसके पिता शहीद हो गए और उसकी माता उससे बोली, मिख्वाहम की मरा अज खूने खुद सरबते दिही ताशीरे की अज पिस्ताने मन खुरदई बरतो हलाल करदत। कितने सुंदर शब्द हैं जो शायद ही किसी वीर माता के मुंह से निकले होंगे। भावार्थ यह है, मेरी इच्छा है कि तू अपने रक्त का एक घूंट मुझे दे दे, जिसमें कि यह दूध जो तूने मेरे स्तन से पिया है तुझ पर हलाल हो जाए। वहब के शहीद हो जाने के बाद क्रम से कई योद्धा निकले और मारे गए। इस्लामी पुस्तक में तो उनकी वीरता का बड़ा प्रशंसात्मक वर्णन किया गया है। उनमें से प्रत्येक ने कई कई सौ शत्रुओं को परास्त किया। ये भक्तों के मानने की बातें हैं। जो लोग प्यास से तड़प रहे थे, भूख से आंखों तले अंधेरा छा जाता था, उनमें इतनी असाधारण शक्ति और वीरता कहाँ से आ गई? उमर बिन साद की सेना में सिमर बड़ा क्रूर और दुष्ट आदमी था। इस समर में हुसैन और उनके साथियों के साथ जिस अपमान मिश्रित निर्दयता का व्यवहार किया गया, उसका दायित्व तो इसी सिमर के सिर है। यह धार्मिक संग्राम था और इतिहास साक्षी है कि धार्मिक संग्राम में पाशविक प्रवृत्तियां अत्यंत प्रचंड रूप धारण कर लेती हैं। पर इस संग्राम में ऐसे प्रतिष्ठित प्राणी के साथ जितनी घोर दुष्टता और दुर्जनता दिखाई गई, उसकी उपमा संसार के धार्मिक संग्रामों में भी मुश्किल से मिलेगी। हुसैन के जितने साथी शहीद हुए, प्रायः उन सभी की लाशों को पैरों तले रौंदा गया, उनके सिर काटकर भालों पर उछाले और पैरों से ठुकराए गए। पर कोई भी अपमान और बड़ी से बड़ी निर्दयता उनकी उस कीर्ति को नहीं मिटा सकी थी जो इस्लाम के इतिहास का आज भी गौरव बढ़ा रही है। इस्लाम के साहित्य और इतिहास में उन्हें वह स्थान प्राप्त है जो हिंदू साहित्य में अंगद, जामवंत, अर्जुन, भीम आदि को प्राप्त है। सूर्यास्त होते होते सहायकों में से कोई भी नहीं बचा। अब निज कुटुंब के योद्धाओं की बारी आई। इस वंश के पूर्वज हाशिम नाम के एक पुरुष थे, इसीलिए हजरत मोहम्मद का वंश हाशमी कहलाता है। इस संग्राम में पहला हाशमी जो क्षेत्र में आया वह अब्दुल्लाह था। यह उसी मुस्लिम नाम के वीर का बालक था जो पहले शहीद हो चुका था। उसके बाद कुटुंब के और वीर निकले, जाफर, इमाम हसन के तीन बेटे, अब्बास के कई भाई, हजरत अली के कई बेटे, और सब बारी बारी से लड़कर शहीद हुए। हजरत अब्बास ने हुसैन से कहा, मैं बहुत प्यासा हूँ। संध्या हो गई थी, अब्बास पानी लाने चले पर रास्ते में घिर गए। वह असाधारण वीर पुरुष थे, हाशमी लोगों में इतनी वीरता से कोई नहीं लड़ सका। एक हाथ कट गया तो दूसरे हाथ से लड़े, जब वह हाथ भी कट गया तो जमीन पर गिर पड़े। उनके मरने का हुसैन को अत्यंत शोक हुआ, बोले, अब मेरी कमर टूट गई। अब्बास के बाद हुसैन के नौजवान बेटे अकबर मैदान में उतरे। हुसैन ने अपने हाथों उन्हें शस्त्रों से सुसज्जित किया। आह, कितना इससे विदारक दृश्य है। बेटे ने खड़े होकर हुसैन से जाने की आज्ञा मांगी। पिता का वीर हृदय अधीर हो गया। हुसैन ने निराशा और शोक से अली अकबर को देखा, फिर आंखें नीची कर ली और रो दिए। जब वह शहीद हो गया तो शोक विह्वल पिता ने जाकर लाश के मुंह पर अपना मुंह रख दिया और कहा, बेटा, तुम्हारे बाद अब जीवन को धिक्कार है। पुत्र प्रेम की, यह लोक की ममता के आदर्श पर, धर्म पर, गौरव पर कितनी बड़ी विजय है। अब हुसैन अकेले रह गए। केवल एक 7 वर्ष का भतीजा और हसन का एक दुधमुहा पोता बाकी था। हुसैन घोड़े पर सवार महिलाओं के खेमों की ओर आए और बोले, बच्चे को लाओ, क्योंकि अब उसे कोई प्यार करने वाला न रहेगा। स्त्रियों ने शिशु को उनकी गोद में रख दिया। वह अभी उसे प्यार कर रहे थे कि अकस्मात एक तीर उसकी छाती में लगा और वह हुसैन की गोद में ही चल बसा। उन्होंने तुरंत तलवार से गढ़ा खोदा और बच्चे की लाश वहीं गाड़ दी। फिर अपने भतीजे को शत्रुओं के सामने खड़ा करके बोले, अय अत्याचारियों, तुम्हारी निगाह में मैं पापी हूँ, पर इस बालक ने तो कोई अपराध नहीं किया, इसे क्यों प्यासों मारते हो। यह सुनकर किसी नर पिशाच ने एक तीर चलाया जो बालक के गले को छेदता हुआ हुसैन की बाह में गड़ गया। तीर के निकलते ही बालक की क्रीड़ाओं का अंत हो गया। हुसैन अब रणक्षेत्र की ओर चले। अब तक रण में जाने वालों को वह अपने खेमे के द्वार तक पहुंचाने आया करते थे, उन्हें पहुंचाने वाला कोई मर्द न था। तब आपकी बहन जैनब ने आपको रोकर विदा किया। हुसैन अपनी पुत्री सकीना को बहुत प्यार करते थे। जब वह रोने लगी तो आपने उसे छाती से लगाया और तत्काल शोक के आवेग में कई शेर पढ़े, जिनका एक एक शब्द करुण रस में डूबा हुआ है। उनके रणक्षेत्र में आते ही शत्रुओं में खलबड़ी पड़ गई, जैसे गीदड़ों में कोई शेर आ गया। हुसैन तलवार चलाने लगे और इतनी वीरता से लड़े कि दुश्मनों के छक्के छूट गए। जिधर उनका घोड़ा बिजली की तरह कड़क कर जाता था, लोग काई की भांति फट जाते थे, कोई सामने आने की हिम्मत न कर सकता था। इस भांति सिपाहियों के दलों को चीरते फाड़ते वह फरात के किनारे पहुंच गए और पानी पीना चाहते थे कि किसी ने कपट भाव से कहा, तुम यहाँ पानी पी रहे हो, उधर सेना स्त्रियों के खीमों में घुसी जा रही है। इतना सुनते ही लपक कर इधर आए तो ज्ञात हुआ कि किसी ने छल किया है। फिर मैदान में पहुंचे और शत्रु दल का संहार करने लगे, यहाँ तक कि शिमर ने 3 सेनाओं को मिलाकर उन पर हमला करने की आज्ञा दी। इतना ही नहीं, बगल से और पीछे से भी उन पर तीरों की बौछार होने लगी। यहाँ तक कि जख्मों से चूर होकर वह जमीन पर गिर पड़े और शिमर की आज्ञा से एक सैनिक ने उनका सिर काट लिया। कहते हैं जैनब यह दृश्य देखने के लिए खीमे से बाहर निकल आई थी। उसी समय उमर बिन साद ने उससे उसका सामना हो गया। तब वह बोली, क्यों उमर हुसैन, इस बेकसी से मारे जाएं और तुम देखते रहो। उमर का दिल भर आया, आंखें सजल हो गईं और कई बूंदें दाढ़ी पर गिर पड़ी। हुसैन की शहादत के बाद शत्रुओं ने उनकी लाश की जो दुर्गत की, वह इतिहास की अत्यंत लज्जाजनक घटना है। उससे यह भली भांत प्रकट हो जाता है कि मानव हृदय कितना नीचे गिर सकता है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चे की कथा भी यहाँ मात हो जाती है, क्योंकि ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी धर्म संचालक के नवासों को अपने नाना के अनुयायियों के हाथों बुरा दिन देखना पड़ा हो।